मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 18 जून 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं आलोक वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और नितेश कुमार शर्मा बदायूं उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसकी चर्चा कल मैंने आप सबसे की थी और वह यह कि क्या कृषि के विषय को जो अभी राज्य सूची में है समवर्ती सूची में डाल देना चाहिए। इस पर हम लोग बाद में बातें करेंगे, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर आपने न्यूज में सुनी और वह यह कि भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा जी को अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनफैक्ट सच पूछे तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह कोई बड़ी खबर नहीं है, इसे आप सामान्य सी खबर मान सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा अवसर है जिसके माध्यम से हम थोड़ी सी इंडियन पॉलिटी को समझ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसे जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं डेमोक्रेसी में बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जो चुनाव लड़ करके और सरकार बनाती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और विपक्ष में जो रोल प्ले करने वाला जो दल होता है वो भी पॉलिटिकल पार्टी ही होता है। तो लोकतंत्र की जो रीढ़ की हड्डी है वो तो डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। अध्यक्ष का मतलब है कि जो पूरा का पूरा संगठन है उस संगठन का प्रमुख व्यक्ति। आप कल्पना करके देखिए, संगठन का प्रमुख, उसका काम है कि वो अपने संगठन को मजबूत बनाए और फैलाए और एक जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर कि जो देश भर में चुनाव होते हैं चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों उसमें पार्टी को विजयी भी बनाइए, उसका एक नैतिक दायित्व तो होता है। आप कल्पना करके देख सकते हैं कि अध्यक्ष पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखें कि हमारे पास जो राजनीतिक दल हमारे सामने अभी हैं उनमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके संविधान में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है उनके अपने संविधान में कि कोई भी अध्यक्ष अपने दो टर्म से ज्यादा नहीं बना रहेगा, यानी कि दो टर्म अधिकतम वो दो टर्म तक रह सकता है और इसके बाद फिर कोई नया अध्यक्ष बनेगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार नए नए अध्यक्ष आते रहे हैं। जबकि हम दूसरी पार्टियों को देखते हैं तो वहां स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे अभी ही जब चुनाव प्रचार हो रहे थे तो आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस पर यही प्रहार करती थी, इस बात की आलोचना करती थी कि किस तरह से कांग्रेस जो है एक प्रकार से वंशवादी पार्टी हो गई है। मतलब वहां जो अध्यक्षता है उसका जो पूरा का पूरा पीरियड है आजादी के बाद से आप देखेंगे तो नेहरू जी और इंदिरा जी, फिर राजीव जी और इसके बाद फिर सोनिया जी और अब जो है राहुल गांधी। और मजेदार बात यह है कि अब लोकसभा के चुनाव के हारने के बाद उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए जब अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है अध्यक्ष पद से, तो उसे पार्टी स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो कह रही कि नहीं नहीं आप ही इस पद पर बने रहें। सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है या कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हम इन दो प्रश्नों पर थोड़ी सी बात करेंगे। पहली बात तो यह है, देखिए कि जब तक पार्टी शुरू से संगठन के बारे में इस तरह की धारणा लेकर नहीं चलेगी कि हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है कि जो अध्यक्ष भी बने वो निर्वाचित हो, मनोनीत नहीं कि दो चार लोगों ने निर्णय ले लिया या एक अध्यक्ष चुन लिया गया तो वही लंबे समय तक अध्यक्ष बनते चले आ रहे हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन हमारी जो ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से बिल्कुल अलग हैं। ये केवल कांग्रेस की बात नहीं है, आप देखिए कि जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहां तक कि आप साउथ की पार्टी को ले लीजिए, उड़ीसा में बीजू जनता दल की पार्टी को ले लीजिए, सभी जगह कमोवेश आपको इसी तरह की प्रवृत्ति दिखाई देगी कि उस पार्टी पर या तो एक व्यक्ति का कब्जा है और वो लंबे समय तक उस पर टिका हुआ है या फिर उस परिवार का कब्जा है, एक परिवार का कब्जा है। तो जब किसी पार्टी के साथ यह स्थिति होती है तो जो पार्टी का अध्यक्ष होता है वो अपनी सेकेंड लाइन को डेवलप नहीं होने देता, उसे भय रहता है कि अगर उसने किसी सेकेंड पर्सन को शक्तिशाली बनने दिया तो हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि वो जो सेकेंड पर्सन है वो अध्यक्ष को हटा करके खुद अध्यक्ष बन जाए या पार्टी के तहत वो अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश करने लगे। तो ये प्रवृत्ति आप कह लीजिए कि सही मायने में लोकतंत्र विरोधी प्रवृत्ति है और भारतीय जनता पार्टी की आप इस मायने में प्रशंसा कर सकते हैं कि कम से कम पार्टी के अंदर भी वह इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर चल रही है। दोस्तों, जो दूसरी खबर है वह बिहार की है और आपने न्यूज में सुना कि किस तरह से बिहार में दिमागी बुखार फैला हुआ है और उससे 100 बच्चों की मृत्यु हो गई है। 100 बच्चों की मृत्यु, सोच करके देखिए दोस्तों, जब हम सोचते हैं तो एक तरह से दिल दहल जाता है। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यहां सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिहाज से मैं कहना चाहूंगा, सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये जो दिमागी बुखार है इसके बारे में आप छोटा सा नोट तैयार कर ले, बहुत ही छोटा सा, खासकर प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से मुझे थोड़ा सा महत्वपूर्ण लग रहा है। ये बेसिकली ब्रेन इन्फेक्शन है जिसे हम जापानी बुखार भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे आप कहते हैं इनसेफेलाइटिस। इनसेफेलाइटिस की मैं आपको अंग्रेजी में स्पेलिंग बता देता हूं, ENCEPHALITIS। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ENCEPHALITIS। इसको शॉर्ट फॉर्म में JE भी कहा जाता है, JE। तो दोस्तों, ये जो जापानी बुखार है बेसिकली ये वायरस से होता है और इसके जो लक्षण हैं वो सिर दर्द, बुखार और उल्टी महसूस होता है, दिमाग भी कुछ कुछ लगता है जैसे कि भ्रमित हो रहा है, और मच्छरों से ये फैलता है और खासकर साउथ ईस्ट एशिया और जो पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र हैं इसकी चपेट में बहुत बुरी तरह से आते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर जिसके बारे में मैं शुरू में आपको बता चुका हूं। मुझे लगता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे वो अखबार का टॉपिक हो या आपके किताब का टॉपिक हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए और वह यह कि यह टॉपिक जिसे आप पढ़ रहे हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, और अगर है भी तो कितना इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के तौर पर कल जो मैंने आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल दिया, पहली बात तो यह कि आप इसे मैच कीजिए कि क्या आपके सिलेबस से ये मैच कर रहा है। तब आप पाएंगे कि शायद सिलेबस से सीधे सीधे तो मैच नहीं कर रहा है। आप देखिए कि हाँ, एग्रीकल्चर को अगर आप मान करके चलते हैं एज ए टॉपिक तो डेफिनेटली ये मैच कर रहा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर पर है और एग्रीकल्चर के बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू पर है। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर वाले थोड़े से डिटेल्स पर जाएंगे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तब आपको लगेगा कि नहीं, उससे तो मैच नहीं कर रहा है। कभी कभी आपके दिमाग में ये भी भ्रम आ सकता है कि नहीं, ये पॉलिटिकल साइंस का ज्यादा है क्योंकि इसमें समवर्ती सूची और राज्य सूची की बात कही गई है। अब आप क्या करेंगे, यानी कि आपका निर्णय क्या होगा? देखिए, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस बहुत क्लियर नहीं है, जैसे कि हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस होते हैं। हालांकि यूपीएससी ने सिलेबस दिया जरूर है लेकिन उतने डिटेल में नहीं है। तब आप इसके बारे में क्या निर्णय लेंगे? जैसा कि मैंने पहले कहा मित्रों, पहली बात देखिए कि ये कृषि पर है और कृषि व्यवस्था से है कि कैसे भारत में कृषि का विकास किया जाए। अब आप कैसे निर्णय लेंगे, मैं निर्णय लेने का आधार बता रहा हूं, कैसे कृषि का विकास किया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2022 तक हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, तो वो कैसे किया जाए? केंद्र सरकार किसानों के बारे में इतने सारे डिसीजंस ले रही है, उसको राज्यों पे कैसे लागू कराया जाए, क्या किया जाए? तो जब आप इस पर सोचेंगे कि नहीं, कृषि को बढ़ावा देना आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता बन चुकी है, तब हम जाकर के कहीं अपने उस 7% प्लस GDP को हासिल कर पाएंगे। और कृषि व्यवस्था बहुत ज्यादा दबाव में है, इस चुनाव में भी आप देख चुके हैं कि किस तरह से सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए कुछ घोषणाएं करनी पड़ी हैं, जहां तक कि राजनीतिक दलों ने घोषणा की है। तो कृषि क्षेत्र हमारा बहुत ज्यादा दबाव में है। तो अब सवाल यह है कि कृषि को उबारा कैसे जाए? तो क्या आप नहीं समझते हैं कि अगर राज्य सूची से हटाकर के कृषि को संवर्ती सूची में डाल दिया जाए तो केंद्र के हाथ में उससे संबंधित नीतियां बनाने की शक्तियां आ जाएंगी, कानून बनाने की शक्तियां आ जाएंगी। और जब कानून बनाने की शक्तियां आ जाएंगी तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र इस दबाव से उबर जाए। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक दो साल पहले से तैयारी कर रहे होंगे तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे मंडी जिस तरीके से काम कर रहे राज्यों में वो किसानों का एक प्रकार से जबरदस्त रूप से शोषण कर रहे हैं। और केंद्र सरकार इस बात को लेकर के बहुत परेशान है कि ये जो मंडियों की जो नीतियां हैं, जो कानून है, जो राज्य बनाती हैं, इसमें कैसे संशोधन किया जाए, इसे कैसे फार्मर फ्रेंडली बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, चलिए, केंद्र सरकार ने फिर अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ताकि वहां जाकर के किसान अपना सामान पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन मंडियां अभी भी जारी हैं। अब केंद्र सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो कृषि है वो राज्य का विषय है और राज्य अपने ढंग से कानून बना रहे हैं, कुछ सीमा तक केंद्र उसमें कर सकती है। अब बहुत से ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार निर्णय लेती है, हालांकि है वो कृषि के बारे में। इसी आर्टिकल में आपने देखा कि समर्थन मूल्य के बारे में केंद्र सरकार निर्णय लेती है कि क्या समर्थन मूल्य होगा। अब सवाल यह है कि अब उस समर्थन मूल्य के आधार पर राज्य उनको लागू करती है नहीं करती है, फसल बीमा योजना को राज्य कितना लागू करती है कितना लागू नहीं करती है, क्योंकि केंद्र उस पर दबाव नहीं डाल सकता कि आपको इसे लागू करना ही है क्योंकि वो राज्य सूची का विषय है और उन्हें वो अपने ढंग से करते हैं। इसी आर्टिकल में आपने देखा कि 1935 का जो अधिनियम हमारा आया था, भारत शासन अधिनियम, जो हमारे संविधान का एक तरह से आधार भी है, बहुत महत्वपूर्ण आधार है, उस समय बकायदे कृषि को राज्य सूची में डाला गया और इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से उस समय का जो परिवेश था, जो परिस्थिति थी, वो पूरी तरह से भिन्न थी जो आज कृषि की परिस्थितियां हैं। और इसके बारे में इस आर्टिकल में बकायदे पॉइंट्स दिए हुए हैं और बड़े खूबसूरत तरीके से पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आप इस पर नोट्स बनाएंगे कैसे दोस्तों? इस पर आप देखिए, दो तीन पार्ट से नोट्स बनाएंगे। पहला, संविधान की जो स्थिति है वो। इसके बाद दूसरा देखिए कि इसमें बकायदे दो समितियों का उल्लेख किया गया। एक तो जो स्वामीनाथन की नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है, कि उन्होंने रिकमेंड किया कि नहीं इसे समवर्ती सूची में लाना चाहिए। इसके बाद दूसरी समिति है दलवाई समिति, ये समिति है वो आयोग है, उन्होंने भी कहा है कि इसे बकायदे समवर्ती सूची में लाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एक्सपर्ट हैं वो ये मान करके चल रहे हैं कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि कृषि समवर्ती सूची का विषय बने, फर्स्ट। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आप 1935 के एक्ट को ले आइए कि उस समय इसे राज्य सूची में क्यों रखा गया था। थर्ड पॉइंट में आप लेकर के आइए कि कौन सी अब ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं जिसकी वजह से इसे समवर्ती सूची में लाया जाना अनिवार्य सा जान पड़ता है, और उसके लिए बकायदे पॉइंट्स दिए हैं कि किस तरह से कृषि संबंधी परिस्थितियां पूर्व की स्थितियों से बिल्कुल भिन्न हो चुकी हैं। इसके बाद फिर फोर्थ पॉइंट में आप ला सकते हैं कि कैसे जो निर्णायक जो नीतियां होती हैं कि आप कृषि से संबंधित, वो केंद्र लेता है लेकिन राज्य उन्हें मानने को उस तरह से बाध्य नहीं है, और इसका असर हमारी कृषि व्यवस्था पर पड़ रहा है। इस तरह से चार भागों में नोट्स बनाने के बाद आप छोटे 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 पॉइंट्स लिख लीजिए, एक एक दो दो लाइन में लिख लीजिए, दो 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 चार शब्दों में भी आप उन्हें लिख सकते हैं, और आखिरी में फिर अब आप अपना कंक्लूजन दीजिए। आप क्या समझते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि ये तो राज्य के अधिकारों पर हनन होगा, ये संघात्मक व्यवस्था के खिलाफ होगा, आप ये भी तर्क ले सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि राज्य भी एक तरह से चुन करके आते हैं, राज्य के भी मुख्यमंत्री चुन करके आते हैं और उन्हें भी अपनी जनता को जवाब देना होता है, तो वो भी हमें मान करके चलना चाहिए कि वो भी इतने उत्तरदायित्वपूर्ण हैं कि वो अपने यहां के कृषि का विकास करें, तो इस तरह से आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर है। वो लास्ट पार्ट होगा। और इस तरह से अब आप देखिए कि ये छोटा सा ही आर्टिकल है, बहुत बड़ा आर्टिकल नहीं है, लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, और इसकी खूबसूरती इस बात में है कि तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, मतलब जो भी बात कही जा रही है उसके लिए जो राइटर है इसका, वो तथ्य दे रहा है। दोस्तों, सिविल सर्विस में अच्छे उत्तर की यही सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात करते हैं। अगर आप इस पर एक बहुत अच्छा नोट तैयार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि जो ये चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इससे आपको आगे की तैयारी के लिए भी बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं विजय कुमार, गुड़िया कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से, अभिषेक राय, बबलू चौधरी, रुचि राय और सौरभ पाठक ग्रेटर नोएडा से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।